नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया, रेडियो मानव रचना 107.8 के लिए हर बार की तरह आपके लिए लेकर आए हैं एक जागरूक कार्यक्रम। आप हमारे कार्यक्रम अक्सर सुनते हैं और हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो ज्ञान बांटते हैं, उससे कितने लोग उसका फायदा उठाते हैं, कितनों का भला होता है, कौन इससे सोच को अच्छा बनाता है, ये आप पर निर्भर करता है। हम तो अपना दायित्व ही निभाएंगे। आज इस कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं बहुत ही एमिनेंट गेस्ट। आप नाम सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। हमारे बीच में सबसे पहले गेस्ट हैं हमारे साथ प्रोफेसर आईके किलम, जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, और साथ ही बैठे हैं राजीव जेटली जी। एसेंस ऑफ लीडरशिप के बारे में तो आपने सुना ही है, लीडर्स कैसे होने चाहिए, उनमें क्या क्वालिटीज हों, इसके बारे में ये लोगों को जागरूक करते ही हैं। मीनाक्षी मुंजाल हमारी एक और एमिनेंट गेस्ट, हेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही एक बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर, मानव रचना यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर सुरेश बेदी, डायरेक्टर कंटिन्यूइंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन, डायरेक्टर क्वालिटी अश्योरेंस भी हैं, और ये भी मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो आपने हमारे गेस्ट का नाम सुना और समझ ही गए होंगे कि ये कितना बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, कितनी एजुकेशनल बातें आप सुनने वाले हैं और कितना फ़ायदा आप उठाते हैं, ये आप पर छोड़ते हैं। प्रोफेसर किलम, आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा जो कार्यक्रम है उसका सब्जेक्ट है रोल ऑफ टुडेज यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट। आज का जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, ये अपने देश के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या सोच रखता है और कैसी सोच इनको रखनी चाहिए?
Renu ji, the topic is wonderful and relevant in the context of today's time.
Ji.
Whether it is politics, whether it is development, whether it's concern for the country, youth have a larger role to play.
Ji.
When Mr. Gambhir, our director radio station, just a few minutes back spoke to me, I thought to jot down a couple of points.
Mm-hmm.
So I wrote don'ts and do's for the youth.
Ji.
I'll start with the don'ts, what they should not. Because once youth realizes what they should not, we will reach the next stage.
Right.
So when I was thinking what they should not, I generally find a lot of indifference among youth towards the country, towards the overall development, jiske kai wajah honge. So first of all, they should shun this indifference towards their societal role, their own role. The second part, there is some kind of cynicism developed over the years for whatever reason. जिसके शायद जिम्मेवार हमारी जनरेशन हो, कुछ पॉलिटिकल सिस्टम हो, कुछ इकोनॉमिक प्रोग्रेस उतनी नहीं हुई जितनी शायद होनी चाहिए थी या एक्सपेक्टेशन थी, दोनों में अंतर होगा। सो बिकॉज ऑफ दीज हैपनिंग्स सम काइंड ऑफ सिनिसिज्म हैपन्स एंड डेवलप्स विद इन द यूथ। दिस सिनिसिज्म शुड गो। द थर्ड इज द नेगेटिव एटीट्यूड। द नेगेटिव एटीट्यूड हैज टू गो एंड इट विल कम फ्रॉम फैमिली, इट विल कम फ्रॉम स्कूल्स, इट विल कम फ्रॉम the environment where they live and work. This negative attitude has to go. Fourth, the lethargy has to go. One has to be dynamic and active in whatever he is doing. One may be a musician, may be a philanthropist, may be a social worker, may be an engineer or a doctor. The lethargy has to go. And fifth, we must never stop learning. These are my five don'ts for the time being. I thought we'll move on with the panel and I'll come to the do's a little later.
Very nice. That's really great, Mr. Killam. आपने जो ये पांच पॉइंट्स बताए हमारी जेनरेशन को, ये वाकई बहुत ही सोचने वाले, बहुत ही अमल करने वाले मुद्दे हैं। अगर हमारी जेनरेशन ये सब समझ जाए और इन्हीं पर चले और इन्हीं को अपनाए और इन चीज़ों से दूर भागे, तो मैं समझती हूँ कि नेशनल डेवलपमेंट तो अपने आप ही होगी। राजीव जी, आपके पास उसी सवाल को लेकर आऊँगी कि रोल ऑफ टुडेज यूथ फॉर नेशनल डेवलपमेंट, वॉट इट शुड बी। इनफैक्ट आप तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भी करते हैं, एसेंस ऑफ लीडरशिप, जिसमें इसी तरह के गुण आप डेवलप करते हैं बच्चों में, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
रेनू, मैं आई रियली एग्री विद डॉक्टर किलम ऑन दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन वन मोर थिंग, इज जस्ट नॉट टुडेज यूथ। जब भी चेंजेस आए हैं, वो यूथ चाहे आज का हो चाहे पहले का हो,
यूथ ही लेके आए,
वो यूथ ही लेके आए
जी।
चाहे वो महात्मा बुद्ध रहे हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे स्वामी दयानंद रहे हों, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों।
राजीव जी, आपको बीच में टोकूंगी, अन्ना हजारे के बारे में क्या ख्याल है?
मैं आपको यही बताने की बात कर रहा हूँ कि अन्ना हजारे भी एक ऐसे करेक्टर हैं जिनको ताकत जो मिली है वो भी यूथ से मिली है
जी।
तो मैं ये बोलना चाहूंगा जो इनिशिएट किया है, जो क्रिएट किया है और जिसने इम्प्लीमेंट किया वो यूथ ही रहा है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि यूथ ने जो अपना तजुर्बा है और अपनी जो नॉलेज है वो बुजुर्गों से ली है, बड़ों से ली है। लेकिन क्योंकि जब बड़े और बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि आप अगर गीता को भी फॉलो करें तो गीता में भी बहुत साफ लिखा हुआ है कि अगर आप फॉलो करेंगे किसी ज्ञान को तो वो आप किसी भी स्टेज पे जाके कर सकते हैं। ये आपके लिए मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है और आपके पैरामीटर्स क्या हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज का जो यूथ है, जैसे डॉक्टर किलम ने भी एम्फेसाइज किया और बहुत क्लियरली बताया कि उनको किन किन चीज़ों से हटना चाहिए और किन किन चीज़ों से जुड़ना चाहिए
जी।
ये जनरेशंस हमेशा से चलती हुई आई हैं। उस टाइम पे भी लोग नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे, उस टाइम पे न्यूट्रल भी थे और अट्रैक्टिव भी थे, उस टाइम पे भी लोगों की सोच डिफरेंट डिफरेंट थी। आज भी इसी तरीके के यूथ हैं, क्योंकि एक सेचुरेशन स्टेज आई थी, एक स्टेज आई थी हमारी इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद फिर हम रुक गए थे, वो स्टैग्नेंट स्टेज थी। आज फिर एक सेचुरेशन स्टेज आई, सेचुरेशन स्टेज के बाद अब जब यूथ था उसको लगा कि मुझे चेंज लेके आना चाहिए। आज आप देखिए यूथ में चेंजेस हैं, वेरस इफ यू गो बैक 47 से लेके अगर 90s के बीच में देखें तो कुछ चेंजेस नहीं थे, बिकॉज हर आदमी दौड़ भाग में था सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए। आज रोजी रोटी से ऊपर उठ के, बिकॉज हर आदमी सोचता है जो मेरा टैलेंट है मैं उसे रोजी रोटी बनाऊं, लेकिन पीछे क्या होता रहा, जिसका जो भी टैलेंट रहा उसने उस टैलेंट को किल करके कहीं ना कहीं उसने कंप्रोमाइज किए और वो जुड़ता चला गया अपने सो कॉल्ड प्रोफेशन से जो उसको दिए जा रहे थे। तो मुझे लगता है आज का जो यूथ है वो सैचुरेशन स्टेज के बाद निकल के आ रहा है, निकल के आया, चेंजेस लेके आया। वो चेंजेस जो है वो हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे अब आगे।
यानी जो चेंजेस यूथ आज की डेट में लेके आया है और जो यूथ आज का कर रहा है अपने प्रोफेशन के से हट के भी, वो नेशनल
नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज यूथ में एक क्वालिटी है, यूथ में एक सोच आई है कि वो अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। पहले लोग अपने टैलेंट को किल कर जाते थे, खत्म कर जाते थे
रोजी रोटी के लिए,
उनको जो बताया जाता था वो वही काम करते थे।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही राजीव जी ने कि आज का यूथ अपने टैलेंट को भी उतना ही यूज कर रहा है जितना एक नेशनल डेवलपमेंट में क्वालिटी को।
जब आपके टैलेंट को, आप अपने टैलेंट को यूज करेंगे और उसमें अगर आपको रेवेन्यू जनरेशन होगा तो वो रेवेन्यू जनरेशन का पार्ट कहीं ना कहीं हमारे फिस्कल में जाएगा और हमारे देश उसी फिस्कल से ही चलता है।
बिल्कुल, मौका भी मिलेगा और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की तरफ से भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर किलम ने, अपने पॉइंट्स बताए, राजीव जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया। अब हमारे पास है बहुत ही प्यारी सोशल वर्कर जो अपने सोशल वर्क में बिजी रहती हैं, साथ ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी हैं, मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, आपने हमारे दोनों गेस्ट को सुना, आपसे थोड़ा सा चेंज करके सवाल करना चाहूँगी कि यूथ का नेशनल डेवलपमेंट में क्या रोल है, लेकिन गर्ल्स का क्या रोल होना चाहिए?
बिल्कुल रेनू जी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि यूथ में स्पेसिफिकली विमेन का रोल जो है नेशनल डेवलपमेंट में या सोशल डेवलपमेंट में वो क्या होना चाहिए। आप मुझसे ये पूछें तो आई वुड बी रादर हैप्पी।
बिल्कुल यही पूछना चाहती हूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ विमेन इन नेशनल डेवलपमेंट।
देखिए, मैं इस चीज में थोड़ा इस यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के मैं एक विमेन का रोल जो है हमारी सोसाइटी में उसके ऊपर आऊंगी
जी।
फिर उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट में क्या रोल है
जी।
देखिए, नॉर्मली आजकल के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि गर्ल्स की बात करें, आज का जो यूथ है स्पेशली गर्ल्स की अगर बात करें, लड़कियां बहुत अवेयर हैं। गर्ल्स को पता है उनको क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग हर चीज में शाये करते थे, हम लोग अपने बारे में या किसी और चीज के बारे में बात खुल के नहीं कर सकते,
उतने बोल्ड
हम लोग बात नहीं कर सकते इवन फैमिली मेंबर्स के साथ
भी।
लेकिन आज की यूथ जो है, आज की जो गर्ल्स हैं, वो यंग गर्ल्स जो हैं, वो बात कर सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि टाइम के साथ साथ सोच में बहुत चेंजेस आए हैं। इसमें बहुत बड़ा जो हाथ रहा है, क्योंकि मैं शुरू से आईटी से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बोलूंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज रहा है।
बिल्कुल,
बीट भी फेसबुक या फिर ट्विटर, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट हो या फिर किसी भी तरह का सोशल मीडिया हो, उन सबका बहुत ज्यादा हाथ रहा है
जी।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों को आजकल स्पेशली विमेन को अब उन सभी धारणाओं से, उन सभी परिवेशों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम लोग शुरुआत कर सकते हैं एक स्मॉल सोसाइटी क्लब से, उसके बाद हम लोग स्टेट लेवल पर जा सकते हैं, देन वी कैन गो टू द कंट्री लेवल। इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आज की लेडीज सिर्फ किचन तक सीमित नहीं है, दे आर नॉट लिमिटेड, दे आर नॉट कंट्रोल्ड ओनली, दे आर नॉट बाउंडेड ओनली टू द किचन, वो लोग बाहर निकल रही हैं। बाहर निकलने के साथ साथ उनको सब पता है कि क्या चल रहा है आज की सोसाइटी में, दे आर मोर अवेयर, एंड इस चीज़ का बेनिफिट तभी उठाया जा सकता है जब हम लोग उस नॉलेज को राइट डायरेक्शन में लेकर आए। क्या होता है, टाइम्स हम लोग ने टीवी पे मूवी देखी या सोशल नेटवर्किंग साइट में चिट चैट किया और हम लोग सिंपल छोड़ा कि भैया हो गया। नो, टुडे वी हैव वेरी मच रिक्वायरमेंट टू गो इन अ राइट डायरेक्शन वेयर वी कैन यूटिलाइज आर नॉलेज। सो लड़कियां इस चीज में बहुत आगे जा रही हैं, बहुत ज्यादा। आप कहीं कहीं पर भी देख लें, हर जगह किसी भी फील्ड में देख लें, लड़कियों का रिजल्ट हमेशा ट्रिमेंडस रहता है।
बिल्कुल
Tremendous.
बिल्कुल, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, आपने लड़कियों को सपोर्ट भी किया।
yes, मैं तो बोलती हूँ कि आगे आना बहुत जरूरी है।
उनको प्रोत्साहन भी मिला होगा, जो लड़कियां हमारा ये कार्यक्रम सुन रही होंगी उनको भी लग रहा होगा कि रेडियो पर भी उनको बैलेंस करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए कोई महिला बैठी है। बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच में है प्रोफेसर सुरेश बेदी जी। बेदी जी, आप ये बताएं, थोड़ा सा हट के, डॉक्टर किलम ने अपने पॉइंट्स बताए, राजीव जी ने अपना तरीके से बताया, मीनाक्षी ने गर्ल्स को प्रमोट किया और उनकी तरफ से बात की, आप ये बताएं ये सारा कुछ मिला के कैसा यूथ होना चाहिए जिससे कि हमारे देश का नक्शा ही बदल जाए, डेवलपमेंट अलग तरीके से हो।
रेनू, मैं इस सारी चीज़ को ऐसे शुरू करना चाहूँगा कि आज यूथ एक सिंगल होमोजेनस ग्रुप नहीं है
जी,
इसको आगे विभाजित किया जा सकता है। अगर हम अपने पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो 25 साल से कम उम्र के हैं ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का 50% है, एक फोर्स है। अगर आप गांव के यूथ की बात करें, उनकी समस्याएं कुछ और तरह की हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स की और तरह के हैं, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, शहरों की तरफ प्लान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आज जबकि देश को ज़रूरत है गाँव में विकास करने की, इन लोगों को टेक्निकल स्किल देने की ज़रूरत है। जब इनको शिक्षा और तकनीकी ज्ञान नहीं मिलता है तो ये कई बार गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, उनको दिशा दिखाने की आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज यूथ में कुछ फीचर्स हैं, एक तरह से देखो तो बहुत अच्छे हैं और किसी और तरह से देखो तो कुछ और करने की ज़रूरत भी है।
अच्छाई, जैसे अच्छाई किसको आप कहते
जैसे हैं? अच्छाई हम इसको ये कहते हैं कि आज का जो यूथ है वो ज्यादा निर्भर नहीं करता है डिसीजन लेने के लिए किसी पेरेंट्स के ऊपर या किसी और, वो अपनी सोच का है, सोच पाता है उस उम्र के हिसाब से, ठीक या नहीं सोच पाता वो अलग बात है, पर वो अपना डिसीजन खुद लेता है और शायद उसमें ज्यादा नहीं सुनता है। इसको कई बार हम एक जनरेशन गैप का नाम दे देते हैं, जिसमें थोड़ा उसका डिस्कनेक्ट रहता है अपने टीचर के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। दूसरा ये है कि ये टेक्नोलॉजी सभी बहुत हो गया है, बहुत कुछ आता है, छठी सातवीं क्लास से ही इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, गैजेट्स के बारे में सीख लेते हैं। तीसरा, ये कुछ नया करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बहुत है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है। कई बार बहुत सारे युवा नहीं आगे बढ़ पाते क्योंकि उनको सही डायरेक्शन नहीं है, सही कॉम्पिटेंस नहीं है, सही एजुकेशन नहीं है। आज आप टीचर से बात करें तो ज़्यादातर आपको ये सुनने में मिलेगा कि बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, जैसे किलम साहब ने भी कहा है। वो अलग बात है कि हमें दिशा देने के लिए अपने पढ़ाने के तरीके को इनके साथ कनेक्ट होना है, पर इसके साथ ही साथ युवा की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रति वो पूरी तरह से जागरूक हो। और जो लोग इसमें ज़्यादा अनुभव रखते हैं, जो उनको गाइड करना चाहते हैं, उनके हित में हैं, उनकी थोड़ी सी एडवाइस को लें, उनकी बात को सुनें, ताकि इनको एक डायरेक्शन मिले और उस डायरेक्शन में ये रिज़ल्ट और भी जल्दी से अचीव करें। अभी हमने रिसेंटली देखा, पिछले एक डेढ़ साल में किस तरह से मुद्दे उठे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, और किस तरह से यूथ जो है एक सिंगल फोर्स बन के सामने आया और किस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए, और हमारी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें कई तरह के चेंजेस आए, इसको भी मैं एक नेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा मानता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम आज हम ज़्यादातर जब बात करते हैं तो शहरी यूथ की बात करते हैं, जहाँ एजुकेशन लेवल ठीक है, स्कूलिंग ठीक हुई है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, सब कुछ है। पर अगर हम उस हिस्से में जाएं जहां 70% पॉपुलेशन बसती है, जो हमारे गांव है, वहां हमें ज़रूरत है यूथ को दिशा देने के लिए कि कुछ नया सीख के आएँ और वापस गांव में आके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएं और शहरों की तरफ रुख ना करें। इसी वजह से आज हमारी जो खेती लायक ज़मीन है वो आज वहाँ पे रियल एस्टेट बन रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं और हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर अब हम एक बढ़ते हुए स्केल के ऊपर दूसरे देशों से अनाज मंगवा रहे हैं। हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 70% से ज़्यादा अनाज की हमारी रिक्वायरमेंट इम्पोर्ट होती है।
जी बिल्कुल, आपने सुरेश जी बिल्कुल ठीक कहा, आपका जो एक सोच एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर गांव के बच्चों को प्रॉपर शिक्षा दी जाए, उनमें स्पिरिट तो है काम करने का लेकिन उनके पास दिशा नहीं है, अगर ट्रू एडवाइस अच्छी गाइडेंस दी जाए तो शायद वो अपना गोल प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज मकान बनते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और खेतीबाड़ी कम, ये इसीलिए शायद है कि उनको पूरी गाइडेंस नहीं है वहाँ के यूथ को। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया और मैं समझती हूँ कि जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वो इस चीज़ को ज़रूर अपनाएंगे कि अपने लिए जो मार्गदर्शन उनको चाहिए वो इसी तरह के यूनिवर्सिटीज़ से आकर या जो भी उनका दायरा है काम करने का उसमें जाकर करेंगे। प्रोफेसर किलम, आपसे पूछना चाहूँगी कि जो डेवलपमेंट यूथ कर सकता है वो आज के ज़माने में वो पुराना तरीका और पुरानी बातें ख़त्म हो गई क्योंकि आज कंप्यूटर युग है, आप यूथ को किस तरह का मोटिवेशन देना चाहेंगे, पर्टिकुलर किस फील्ड में बेसिकली आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप इस दायरे से गुजरिए तो शायद देश की तरक्की या हमारा देश सुदृढ़ बन सकता है।
रेणु जी, एज लॉन्ग एज यूथ ऑफ टुडे इज गेटिंग इनटू द करियर्स ऑफ देयर चॉइस
जी
एंड दे गेट टू डू व्हाट दे लाइक, देयर विल बी एन इंपैक्ट ऑन कंट्रीज डेवलपमेंट ऑन इट्स ओन। Only factor that has to be kept in consideration that they are doing a job which is honest and which is efficient. Everyone, whether an IT sector or an entrepreneur or any government job, maybe a civil engineer, as long as he is doing an honest job and an efficient job, two parameters hai mere man mein, honest work and efficient work.
Yes.
The rest will fall in place.
True.
So they have a contribution. The second part where I think I would like to be corrected if I am wrong on this, I would want them also to take equally good take on social issues, on they should participate in some political activity wherever need be. They could participate in some NGO supported activities jisse desh ka hit ho. Earlier jaise Rajiv ji ne kaha, azadi se pehle ek mudda tha logon ke paas, to us azadi ke piche, us goal ke piche everybody went.
Yes.
Young or old.
Yes.
Aur ab hum satisfied nahi hain, honestly if you ask me. Even I as a citizen am not happy. I am not sounding cynical but something drastic has to be done.
Matlab so, jo us samay hua wahi continue hota par raha
hai. ab hum kuch dull phase mein aa gaye hain.
Ji,
we are in dull phase. India has progressed no doubt but happiness nahi hai.
Ji,
I drive on a road for 6 years, I've seen it. No. मैं सोच रहा हूँ मैं किसी को लिखूं कि इस सड़क का इंचार्ज कोई है, कोई ओवरसियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, नोबडी। अगले दिन कोई चीफ मिनिस्टर वहां से जब गुजरेगा तो वो सड़क लेवल होगी, कोई प्रधान किसी पार्टी का आएगा वो सड़क सुधरेगी, ये हमने नहीं चाहता। इसी तरह कहीं नाला गंदा है तो गंदा नाला ही है। जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन and these things, civil infrastructure. और इसके लिए हमें इतना पैसे की जरूरत नहीं है जितना हम, और थोड़ा सा अगर यूथ इसमें इंटरेस्ट ले, डॉक्टर बेदी जस्ट मैंशन दैट ये लास्ट 2 years में जो ये एक्टिविटी हुई, चाहे अन्ना हजारे के डायरेक्शन में हुई, चाहे अरविंद केजरीवाल ने आगे मूवमेंट करी, मुझे लगता है कि यूथ हैज कम फॉरवर्ड इन द लॉन्ग वे, एंड इफ दे कंटिन्यू टू डू इट आई एम श्योर वी विल द यूथ विल टेक ओवर।
राइट, बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर किलम आपने कि अगर यूथ चाहे और जिम्मेदारी समझे, अपना फर्ज समझे देश के प्रति, तो कहीं आगे बढ़ सकता है और देश को भी आगे बढ़ा सकता है। राजीव जी, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, आपका मन उसी प्रश्न के लिए है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं या उनके लिए जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो कितनी सही है और कैसी और होनी चाहिए, या ग्रामीण क्षेत्र का यूथ कैसा होना चाहिए?
देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर बेदी ने जैसा रेफर किया था अभी कि ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन नहीं है और अर्बन क्षेत्रों में एजुकेशन है
जी।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्बन क्षेत्रों की जो एजुकेशन है इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ग्रामीण क्षेत्रों की जो एजुकेशन होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखिए, अपना रिकॉर्ड उठा के देखिए इंडियन एजुकेशन का, तो जितने भी टेक्निकल लोग निकलते हैं जिनको रियल एजुकेशन कहा जाता है, वेदर इट इज़ अ ब्यूरोक्रेसी, वेदर इट इज़ ए आप टेक्निकल फील्ड में जाकर जाके देखिए तो आप देखिए कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़ा रहा है, और क्योंकि उनमें जो लालसा होती है पढ़ने की, वो लालसा शायद अर्बन क्षेत्रों से ज़्यादा होती है, क्योंकि अर्बन क्षेत्रों में डाइवर्सिफाइड है माइंड हमारा, हम 10 चीज़ों के अंदर चलते हैं। और दूसरी बात है, अर्बन जो एरियाज़ हैं इसमें आप देखिए कि बिल्कुल पैरामीटर उनके सेट हैं कि इस एजुकेशन के बाद ही दे विल गो ओवरसीज फॉर द फर्दर एजुकेशन, तो उनका कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है अपनी कंट्री की तरफ थोड़ा सा कम है जो अर्बन क्षेत्रों में है, ग्रामीण का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। लेकिन मैं इससे अलग हटके मैं बार बार अपने एक प्रोग्राम में एक छोटी सी स्टोरी लोगों को सुनाता हूँ, अगर आप मेरे को अलाउ करें तो। मैं
जी
मैं सैचुरेशन स्टेज की बात कर रहा था कि देश में सैचुरेशन स्टेज आ गई है। अब देखिए बाज जो एक पक्षी होता है उसका उसकी जो उम्र होती है वो सबसे लंबी होती है पक्षियों में, वो 70 साल तक जी सकता है
जी।
लेकिन 40 साल के बाद जो होता है उसके पंख जो है वो उतरने शुरू हो जाते हैं, उसकी जो चोंच होती है वो बैंड हो जाती है अंदर की तरफ, और उसके जो पंजे होते हैं वो भी अंदर की तरफ बैंड हो जाते हैं, तो वो अपने जो शिकार है उसको पकड़ नहीं सकता वो। अब बाज के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी घोंसले में या किसी चट्टान पर जाके बैठ जाए और मर जाए, और दूसरा ऑप्शन उसके पास होता है जो बहुत पेनफुल होता है, जिस पेन से उसको लगभग 40 से 50 दिनों के बीच में से निकलना पड़ता है उस प्रोसेस से। वो उस अगर उस प्रोसेस को चुनता है तो बाज की उम्र और 30 साल बढ़ जाती है, लाइक वो 70 साल तक जीता है। तो बाज को क्या करना होता है, बाज अपनी चोंच को पत्थर पे मारकर तोड़ता है, और उसकी जब चोंच टूट जाती है उसमें से ब्लड निकलता है, फिर वो अपने पंखों को उतारता है उसमें से भी उसको ब्लड निकलता है, वो अपने पंजों को भी उतारता है, मतलब एक अपनी ही बॉडी के पार्ट को वो खुद तोड़ता है, खुद तोड़ता है। रिसाइकल इज अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस, आप अपनी बॉडी के पार्ट को तोड़ नहीं सकते हैं, वो तोड़ता है, ब्लड निकलता है, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, और जब उसके बाद उसके नई चोंच आती है, नए पंजे आते हैं और नए वेदर नए पंख आते हैं, उसके बाद वो उसी शक्ति के साथ जिस शक्ति में वो रहता था वो उड़ान भरता है और अपने नए शिकार को पकड़ता है। तो आज हमारे यूथ को उस पेनफुल प्रोसेस से निकलने की जरूरत है, अगर वो तैयार है तो देश बदलाव की तरफ जाएगा, अगर वो तैयार नहीं है वो हमेशा किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को ढूंढेगा, किसी को फॉलो करेगा, तो ये देश कभी भी बदलाव की तरफ नहीं जाएगा। और मुझे यकीन है कि आज का यूथ उस पेन को लेने के लिए तैयार है, और ये
होने लगा।
जो पिछले दिनों में होने लगा कार्यक्रमों में देखा, यूथ आगे बढ़ रहा है, उसको देख कर तो लगता है कि यूथ
बिल्कुल यूथ बदलेगा इस देश को, क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है, हमें जो बताया गया हम वो अपनाते चले गए, हमें बोला गया देश में भ्रष्टाचार है कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसा बोला गया हमने मान लिया, हमें बोला गया देश में राजनीति में बुरे लोग जाते हैं हमने मान लिया, क्योंकि मान लेना तो सबसे आसान काम है, लेकिन पलटकर पूछना कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता उसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो हमें वो जवाब ढूंढने की जरूरत है, और वो जवाब आज का यूथ ढूंढने के लिए निकल पड़ा है।
यानी हौसले बुलंद कर लें अगर हम, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, मंजिल को छू सकते हैं।
बट सॉरी इंटरवेंशन, बट सीनियर्स जब हम सारे लोग
जी,
सीनियर्स विल आल्सो हैव टू थिंक ऑफ रिटायरमेंट एट देयर एज एंड लीव द प्लेटफॉर्म टू द यूथ।
नो दे कैन
विलिंगली दे मस्ट
नो
देयर शुड बी देयर शुड मस्ट देयर शुड बी एनी वर्ड कॉल्ड सीनियर और जूनियर, देयर शुड बी अ वर्ड कॉल्ड वी आर टूगेदर, बिकॉज वी शुड हैव मॉडर्न थिंकिंग, हमारे पे नोशंस हमारे अच्छे होंगे, हम कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते। और अगर एक बच्चा 5 साल की उम्र में भी अगर उसके नोशंस अच्छे नहीं है, उसके विचार पुराने हैं, तो वो कभी जवान नहीं हो सकता।
बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है राजीव जी, आपने बिल्कुल आज के ज़माने की आज के दौर की बात की है, और आपको जो भी यूथ सुन रहा होगा बहुत ही खुश होगा कि हमारे बीच में एक ऐसा युवा भी है जो हमारे को एक नई लीडरशिप और नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ाना चाहता है, और आपकी बात से वो सहमत भी होंगे। मीनाक्षी जी आपके पास वापस आऊँगी इसी सवाल के साथ कि जो यूथ के आज चेंजेस राजीव जी ने बताए, प्रोफेसर किलम ने बताए, इनसे हटकर आप किस तरह की सोच रखती हैं कि जो आज का सिनेरियो है इसको चेंज करने के लिए हमारी आज की युवा शक्ति कहाँ तक जाए, कैसे करे?
देखिए बिल्कुल जैसा कि राजीव जी ने बोला कि पहली बात तो जहाँ तक एजुकेशन की बात है, ग्रामीण और रूरल और अर्बन में एजुकेशन का एज सच कोई आजकल कोई बाउंड्री नहीं रह गई है। हम लोग जो हैं आजकल हम ग्लोबल विलेज में हैं, वी आर नॉट इन टाउन्स, वी आर नॉट इन सिटीज, वी आर इन दी ग्लोबल विलेज। इंटरनेट ने सबको एक तार से जोड़ दिया है, और जिसमें कहीं पर भी कुछ लिमिटेशंस नहीं रह गई हैं। बिल्कुल सही बात है कि 5 साल के बच्चे की अगर सोच खराब है तो वो कभी भी जवान नहीं हो सकता।
सोच तो किसी उम्र में
किसी की भी खराब हो सकती है, वो नहीं हो सकता। जो यूथ की मूवमेंट को आज इस मुकाम पर लेके आए हैं उसके पीछे एक 70 साल के अन्ना हजारे जी का ही हाथ था, ठीक है? तो वो अगर हम लोग ये बोलें कि बूढ़ा हो गया है ये इंसान, ये कुछ कर नहीं सकता, ये जगह नहीं छोड़ रहा है या जो भी, तो मैं पर्सनली सोचती हूँ ये चीज़ ठीक नहीं है। सोच हमेशा आपकी सही होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूथ आजकल के फिर भी जो यंग जनरेशन्स में, मैंने पहले भी अपनी बात में बोला, डायरेक्शन की ज़रूरत है. डायरेक्शन लेस जो बच्चे हैं या जो यूथ है वो गलत काम भी कर रहे हैं और सही काम भी कर रहे हैं. सिर्फ हमारे को क्या करना है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज एन अकाउंटेबल सिटीजन, हमको बच्चों को, यूथ को डायरेक्शन बतानी है कि आप इस डायरेक्शन में जाएं. किसी की भी चीज़ का सही यूज़ और गलत यूज़ हमारे ऊपर निर्भर करता है. अगर मैं सीधा सा ये बोलूँ कि किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी सोशल मीडिया का या किसी भी कनेक्शन का आपको सिर्फ गलत ही यूज़ करना है, वो जो कि आजकल के लोग बोलते हैं, जब देखो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, जब देखो चैटिंग ही करते रहते हैं, अरे क्या पता वो कुछ अच्छा ही कर रहे हो, कुछ अच्छी निकल के आ रही हो चीज़. तो डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है.
या फिर हम अपने यूथ को थोड़ा सा
सिखाएं बिल्कुल
मीडिया पे बैठे,
मीडिया अच्छे के लिए करें. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत जज्बा है आजकल के स्टूडेंट्स में, आजकल के यूथ में बहुत जज्बा है. हम लोग वो, अब वो जो ज़माना जो 20 साल पहले का था, जो जो काइंड ऑफ डलनेस थी, अब वो चीज़ धीरे धीरे रिमूव हो रही है. यूथ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, सब दे आर फीलिंग नाउ कनेक्टेड, दे आर नॉट फीलिंग डिसकनेक्टेड. हम लोग अगर अपने टाइम की बात करें, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हार्डली हम लोगों को पॉलिटिक्स में कोई रुचि रही होगी, लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट भी है. यस, वो मूवमेंट्स में जाते हैं, चाहे वो अन्ना हजारे का मूवमेंट रहा हो या निर्भया का मूवमेंट रहा हो, जंतर मंतर पे गए हैं स्टूडेंट्स. मैं खुद गई हूँ वहाँ पे. तो ये जो चीजें हैं ये आ रही हैं, हम डायरेक्शन देंगे तो वो चीजें डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी.
यानी यूथ को सही डायरेक्शन,
बिल्कुल,
देश के प्रति,
देश के प्रति, समाज के प्रति, बिल्कुल
डायरेक्शन मिले तो यूथ वैसे चलेगा. बहुत बढ़िया, प्रोफेसर किलम ने अपने तरीके से बताई बात, राजीव जी ने अपने तरीके से यूथ को एक्सप्लेन किया, और मीनाक्षी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंस बताया गांव और शहर की यूथ में. प्रोफेसर साहब, समाज के अंदर मुख्य रूप से तीन या चार दायरे माने जाते हैं, पॉलिटिक्स, एजुकेशन या टीचिंग कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस. आज के यूथ को आप इन चारों दिशाओं में कैसा चाहते हैं, कैसा होना चाहिए, क्या बदलाव उनमें होना चाहिए जिससे देश को और समाज को और अच्छी दिशा मिले?
I would say traditionally, earlier when we used to join a job, whether it was teaching or banking or civil services, हम लोग उसी काम में शुरू हुए और उसी काम को अंत तक कर लिया, 30 साल 35 साल. But that time is over. Present generation, number one, as Dr. Bedi said just a little while ago, that they are able to take their own decisions. My own children took their career decisions themselves,
right.
All I had to do is to give them, understand their line and give them support. Even if I didn't give them support, I didn't oppose them. That was good enough for them. And they did very well in their respective careers. Now, coming back to your question, yes, I would say in the present environment, younger generation should work for a few years, maybe 4, maybe 5, maybe 10, depending on their capacity and capability to take a risk, and then join either an entrepreneurial venture, start on their own, keeping in view their own experiences and resource building capacity, and simultaneously be active participant in social processes, political processes, and join the mainstream, whether it's politics or social work.
Mr. Killam, jaise aaj ka jo politics hai, उसमें अगर हम कोई पुराना नेता, सीनियर नेता देखते हैं, और जो कोई नया नेता जुड़ता है, यंग जनरेशन का कोई चुन के आता है, उसकी सोच में और पुराने नेता की सोच में बहुत फर्क होगा. इस मैच को कैसे मैच करना चाहिए?
अच्छा रेणु जी, इट हैज ऑलवेज टू बी अ ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस जिसका है उसका कोई मुकाबला नहीं, बट एक्सपीरियंस पर्सन को भी ये सोचना है कि नई जनरेशन जो आ चुकी है, 25 साल का, 30 साल का नौजवान जो है वो डिफरेंट तरीके से सोचता है, और ही इज़ मोर आईटी सेवी, शी इज़ मोर आईटी सेवी. वी हैव रिसेंटली सीन इन दिल्ली इलेक्शंस व्हाट काइंड ऑफ पीपल हैव कम फॉरवर्ड, एंड सम ऑफ देम हैव ब्रिलियंट यंग रिज्यूमेस, एंड आई एम टेरिबली इम्प्रेस्ड. आई रेड अ न्यूज़पेपर टुडे दैट कंट्री विल फाइंड 1,000 Kejriwals in some 1 week or 2 weeks time. It is not a, by definition, Kejriwal. It could be anybody. And if he has shown the way that in 18 crores he could contest 70 seats and each penny is accounted for on the website, I would say he has shown us the way. He is 45.
Right.
So I have no brief for any A, B or C, but I think yes, youth will do it. It has to be a blend of youth and experience. And as if somebody is more experienced, let him be. there yes. and show the way, be a mental guide, but not necessarily follow the chair.
Yes, actively.
बिल्कुल ठीक. राजीव जी, आपके पास पहुंचूंगी इसी सवाल को लेकर कि इन चार दिशाओं में आज के यूथ को किस तरह की दिशा आप देना चाहेंगे, किस तरह की छूट आप देना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि चार दिशाओं में बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है. ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जिसके पास जो क्वालिटी होगी वो उस रास्ते पे जाएगा. मैं करेक्ट करूँगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि कोई नेता बनना चाहता है. इस बात को शायद, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, नेतृत्व का सत्व, द एसेंस ऑफ लीडरशिप, कोई बनना चाह रहा है ये शब्द तो डिक्शनरी में ही नहीं है. क्योंकि नेता तो अपने आप में, नेता एक प्रोसेस के बाद जब जो व्यक्ति निकल के आता है हम उसे ही लीडर कह सकते हैं. और लीडर बन के आ रहा है, किसी पहनावे को चेंज करके आ रहा है, किसी कपड़े को चेंज करके आ रहा है, तो वो उससे लीडर नहीं बन जाता
जी.
तो सबसे बड़ी बात है, ही कैन बी अ लीडर. वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है, वो बिजनेस में भी हो सकता है, वो बैंकिंग में भी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स में भी हो सकता है. अगर उसके पास लीडरशिप क्वालिटी है तो वो हर जगह पे सरवाइव करेगा. और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को, हर यूथ को, हर बुजुर्ग को अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को मेंटेन रखना ही पड़ेगा. अगर वो मेंटेन रखेंगे तो शायद हमारे ये जो डिफरेंसेस हैं यूथ और बुजुर्ग के, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे. क्योंकि लीडरशिप का मतलब ही यही है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना
जी.
और हर मोमेंट पे आपके सामने चैलेंजेस आएंगे.
जो हमारी एक संस्कृति है, सभ्यता है, जो हमेशा से चली आई है, बुजुर्गों का सम्मान करना, उनकी बात को सुनना, उनके एक्सपीरियंस को मानना, गुरु और चेले का, गुरु शिष्य का एक नाता, उसको इसके साथ कैसे मैच करेंगे?
मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ इस सृष्टि में जो पहले से चली आई है उससे अलग हटके कभी भी नहीं हुई है. बात सिर्फ इतनी है कि जो पहले से चली आई है, उस पहले से चली आई चीज़ों में से अच्छी चीज किसने उठाई और बुरी चीज किसने उठाई. आप कितने भी ग्रंथ उठा के देख लो, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, उसमें चीजें अच्छी भी थी और बुरी थी. अब किसने कौन सी चीज अच्छी उठाई और कौन सी चीज बुरी उठाई, वही चीज, वही प्रोसेस आज चल रहे हैं. डिपेंड ये करता है कि आप उसमें से क्या ऑप्ट कर रहे हैं, क्या निकाल के लेके आ रहे हैं, आपने क्या रिट्रीव किया उसमें से. अगर आपने अच्छी चीज रिट्रीव की तो आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप ही राम है, आप ही कृष्ण है, आप ही भगवान है. और अगर आपने उसको अच्छा नहीं किया तो आप ही रावण है और आप ही कंस है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले.
ठीक बात है, बिल्कुल ठीक. राजीव जी, आपने बड़े ही सरल तरीके से और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया हमारी जनरेशन को. मीनाक्षी, आप क्या कहेंगी इन चारों मुद्दों के ऊपर?
देखिए, टीचिंग, जहाँ तक मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में जाकर या एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर या बिजनेस में जाकर हम लोग कोई ऐसा काम करें या सीखें वहाँ जाके, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे जुड़कर आप बहुत कुछ डे बाय डे सीख सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस में आ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ही हैं जो कि सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं. हर एक ब्लॉक में, हर एक फील्ड में लोग जाकर सीखते हैं, अनुभव करते हैं. सो यूथ की टीचिंग की जहाँ तक बात है, वो ये है कि टीचर्स हमारे जितने जो आज के टाइम के जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. लाइक हम लोग जो क्लास में पढ़ा रहे हैं या बच्चों को सिखा रहे हैं, 70% स्टूडेंट्स उस चीज़ को अपने दिमाग में रख लेते हैं, उस चीज़ को आगे फिर लेकर जाते हैं. तो बीइंग इनटू द टीचिंग प्रोफेशन, और क्योंकि आपने इसमें टीचिंग भी, एजुकेशन भी फील्ड जोड़ी है, तो टीचर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो यूथ को कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे उनको पॉलिटिक्स के बारे में बताएं, कैसे गुड्स एंड बैड्स के बारे में बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज कैसे बताएं, या फिर कोई अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है तो उसके बारे में कैसे उस चीज़ के गुड्स एंड बैड्स के बारे में बताएं. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी स्टूडेंट, जैसे कि राजीव जी ने बोला, कोई भी प्रोफेशन कम्प्लीटली बुरा या अच्छा नहीं होता, या किसी भी दायरे में किसी भी इंसान को रखना वो भी कम्प्लीटली अग्री नहीं है. सिंपल सी बात है कि एजुकेशन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है. हर एक इंसान को एक एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है. मैं हमेशा ये कहती हूँ,
किसी भी फील्ड में अगर हमें तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन बहुत
बहुत जरूरी है.
बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, आपने बड़े खुल के, बड़े अच्छे तरीके से एजुकेट किया, तरीका बताया यंग जनरेशन को आगे बढ़ने का. कार्यक्रम और भी होते रहेंगे इसी तरह के, लोगों को एजुकेट करने के लिए, यंग जनरेशन को नई दिशा और नया रास्ता बताने के लिए, उनको अच्छी गाइडेंस देने के लिए। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा इस कार्यक्रम के लिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की कोई नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, फील गुड, फील लाइफ।